श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना श्लोक संख्या 10 तथा यजतः यज्ञेशम चतुर्भिर् भूरि दक्षिणै द्रव्य क्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे, उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान प्रद यज्ञ संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ हैं, वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करे, अन्यथा वह कर्मफल में फंस जाता है। वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों के अनुसार विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को महान संस्कारगत यज्ञ करने तथा संचित धर्म को उदारता पूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। ध्रुव महाराज ने एक राजा तथा आदर्श क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए और उदारता पूर्वक दान किया। क्षत्रियों तथा वैश्यों से आशा की जाती है कि वे धन कमाकर उसका संग्रह करें। कभी कभी वे पाप द्वारा ऐसा करते हैं। क्षत्रिय देश पर शासन करने के लिए होते हैं। उदाहरणार्थ, ध्रुव महाराज को अपने शासन काल में यक्षों से युद्ध करना तथा उनका वध करना पड़ा। क्षत्रियों के लिए ऐसा कार्य आवश्यक है। क्षत्रिय को कायर नहीं होना चाहिए, न ही उसे अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने के लिए उसे हिंसात्मक कार्य भी करने होते हैं। ऐसे क्षत्रियों को अपनी संचित संपत्ति से कम 50% दान देने की सलाह दी गई है। भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने पर भी यज्ञ दान तथा तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए, इनका कदापि त्याग ना करें। तपस्या तो संन्यास आश्रम के लिए है। जो लोग सांसारिक कार्यों से विरक्त हो चुके हैं, उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो क्षत्रिय तथा वैश्य भौतिक जगत में हैं, उन्हें दान देने चाहिए। ब्रह्मचारियों को जीवन के प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपना कोष खाली कर दिया। राजा का कार्य नागरिकों से मात्र करों की वसूली करके धन संग्रह करना और उसको इंद्र तृप्ति में व्यय करना ही नहीं है। जब से राजाओं ने प्रजा से एकत्र किए गए करों को अपनी नित्यति के लिए व्यय करना प्रारंभ किया, तब से विश्व का राजतंत्र विफल रहा है। निसंदेह चाहे राजतंत्र हो या प्रजातंत्र, सर्वत्र एक सा भ्रष्टाचार चल रहा है। इस समय प्रजातांत्रिक सरकार में विभिन्न दल होते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुर्सी बनाए रखने या अपने दल को सत्तारूढ़ बनाए रखने में व्यस्त है। राजनीतिज्ञों को उस जनता के कल्याण के विषय में सोचने के लिए तनिक भी समय नहीं मिलता जिसको सता करके आयकर, बिक्री कर आदि के रूप में भारी कर लगाए जाते हैं। कभी कभी लोगों की आय का 80-90% कर में ले लिया जाता है और इसको अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकता करने में मनमाने ढंग से व्यय कर दिया जाता है। प्राचीन काल में, जैसा कि वैदिक साहित्य बताता है, नागरिकों से एकत्र किया गया कर बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने में व्यय किया जाता था, जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश है। किंतु संप्रति सभी प्रकार के यज्ञों को कर पाना असंभव है। अतः शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है, कि लोग संकीर्तन यज्ञ करें। कोई भी गृहस्थ बिना खर्च के संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ताली बजा बजा कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार सभी लोग ऐसे यज्ञ कर सकते हैं और लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। इस कलयुग के लिए यही पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित है। जहाँ तक संभव हो मंदिर में या उसके बाहर प्रत्येक क्षण हरे कृष्ण मंत्र का जप करें तथा यथासंभव प्रसाद वितरित करें। इस प्रक्रम को राज्य प्रशासकों के तथा जो देश की संपत्ति को उत्पन्न करते हैं उनके सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मात्र प्रसाद के वितरण तथा संकीर्तन से सारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन सकता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों की संस्तुति की गई है उनमें देवताओं को भेंट चढ़ाई जाती है। देवताओं की पूजा कम बुद्धि वाले पुरुषों के लिए है। वास्तव में ऐसे यज्ञों का फल श्री भगवान नारायण को प्राप्त होता है। भगवद्गीता में 5.29 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं, इसलिए उनका नाम यज्ञ पुरुष है। यद्यपि ध्रुव महाराज महान भक्त थे और उन्हें इन यज्ञों से कुछ लेना देना नहीं था, किंतु अपनी प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ किए और सारी संपत्ति दान में दे दी। जब तक वे गृहस्थ के रूप में रहे उन्होंने इंद्र तृप्ति के लिए एक छदाम भी खर्च नहीं किया। इस श्लोक में कर्म फल प्रदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान जीवात्माओं के इच्छानुसार सबों को भिन्न भिन्न कर्म प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं और वे इतने दयालु तथा उदार हैं कि जो कोई जो कुछ करना चाहता है वे उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तब जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भी भोगता है। यदि कोई सुख भोगना चाहता है या अधिकार जताना चाहता है तो भगवान इसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु वह कर्म फल में फंस जाता है। इसी प्रकार यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और भक्त उसका फल भोगता है। इसलिए भगवान कर्म फल प्रद नाम से विख्यात हैं। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान प्रद यज्ञ संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ हैं वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता हैं। ध्रुव महाराज घर वापस चले गए और राजा के रूप में उन्होंने क्या क्या किया इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन को प्राप्त किए थे और उनका ध्रुव लोक जाना निश्चित था, लेकिन क्योंकि उनकी इच्छा थी राज्य करने की, इसलिए कुछ समय के लिए उनको राजा की तरह एक रोल अदा करना था। तो यहाँ पर अनेक बातें इस श्लोक में सम्मिलित की गई हैं। तो प्रथम तो ये बताया है कि वो यज्ञ ईशम यानी समस्त यज्ञों के जो स्वामी हैं उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने अनेक अनेक यज्ञ किए और इन यज्ञों में उन्होंने दान दिए, अनेक संस्कार जो भी शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट हैं उस प्रकार से, और उसमें देवतागण भी सम्मिलित थे। उस यज्ञ में देवतागणों, साधारण रूप से ऐसे यज्ञ देवताओं के लिए किए जाते हैं, तो उस प्रकार से देवताओं को भी उनका भाग दिया गया। लेकिन ध्रुव महाराज ये भली भांति जानते थे कि सभी यज्ञों के अंतिम जो ईश्वर हैं, भोक्ता हैं, वो भगवान विष्णु हैं। इसलिए उन्होंने उनकी प्रसन्नता के लिए ये सब यज्ञ किए और इस प्रकार से प्रजा को सम्मिलित किया इन यज्ञों को करने में। तो समाज में जो चार वर्ण हैं, जिसकी भगवान ने व्यवस्था की है, चातुर्वर्णमय अथष्टम गुण कर्म विभागशः, उसमें से जो तीन हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, वो समाज के अग्रणी कहलाए जाते हैं। प्रतिनिधि होते हैं वो, और उनका कार्य होता है, जिम्मेदारी होती है, जो अन्य हैं शुद्र स्वयं भी और अन्य यानी शूद्रों को कैसे धीरे धीरे भगवान की तरफ ले जाया जाए। तो हमेशा से उनका ये चिंतन रहता है, विशेष रूप से ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का, कि भगवान ने जो उनको शक्ति और बुद्धि प्रदान की है, ब्राह्मणों को बुद्धि विशेष रूप से और क्षत्रियों को बाहुबल शक्ति प्रदान की है, उसे कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, इसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है। उनके कर्तव्य क्या है ये उनको बताया जाता है। इसीलिए वे लोग अपना कार्य भली भांति करते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि समाज संपूर्ण रूप से सभी उसके वासी प्रगति पथ पर चलते हैं। ये जो एक समाज के हित को देखने की जो भावना है, ये आज बिल्कुल समाप्त हो रही है, ये हम भली भांति देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। वर्तमान में पूरा माहौल स्वार्थ का है, इंद्रिय भोग मानदंड बन गया है प्रगति का और लक्ष्य बन गया है जीवन का। और जब ऐसा होता है तो वो समाज प्रगति के पथ पर नहीं चलता है, अवनति की तरफ चलता है। जानवरों का समाज जाता है, लेकिन सभी जीव तो यहां पर भोग करने के लिए ही आए हैं। इसलिए ऐसा स्वाभाविक प्रतीत होता है और कि उनके लिए इंद्रिय तृप्ति की तरफ चलना स्वाभाविक है, क्योंकि यहां सभी भोग करने के लिए आए हैं, इसलिए वो बड़ी आसानी से उसकी तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति की तरफ। जैसे व्यासदेव जी को नारद मुनि डांटते हैं, ये आपने ये सब शास्त्र लिखे हैं जिसमें कि इंद्रिय भोग, जिसमें भगवान की जो शुद्ध भक्ति है उसके विषय में वर्णन नहीं है, स्पष्ट वर्णन नहीं है, तो इसलिए जो लोग स्वाभाविक रूप से इंद्रिय तृप्ति की तरफ प्रवृत्त होते हैं तो वो तो और उनको बहाना मिल जाएगा। तो ये साधारण नीति है इस समाज की, संसार की, सभी जीव स्वाभाविक रूप से, वो अस्वाभाविक है उनकी मूल स्थिति को देखा जाए तो, मूल स्थिति भगवान की शुद्ध भक्ति की है जीव की, लेकिन वर्तमान स्थिति में माया भूत अवस्था में ये स्वाभाविक है कि वो इंद्र तृप्ति में लिप्त होंगे। तो दो प्रकार के मार्ग शास्त्र में बताए गए हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो प्रवृत्ति मार्ग जो है वो इंद्रिय भोग के लिए प्रेरित करने वाला है और निवृत्ति मार्ग संन्यास की तरफ प्रेरित करने वाला है। तो जो इंद्रिय तृप्ति की तरफ प्रेरित करने वाला मार्ग है वो चाहे वैदिक मंत्रों के अनुसार हो या उसके बिना हो, वो अशुभ है, क्योंकि वो जीव का भ्रम और बढ़ाता रहता है और उसकी बीमारी और प्रगाढ़ होती रहती है और उसके जो कष्ट हैं वो और बढ़ते रहते हैं। तो भगवान दुखालय अशाश्वतम कहे हैं, संसार को अनेक भौतिक कष्ट यहां मिलते हैं, लेकिन वास्तव में जीव का जो वास्तविक कष्ट है, क्योंकि वो शरीर संबंधी कष्ट है, वो भी जीव का वास्तविक कष्ट नहीं है। जिस प्रकार से भौतिक सुख जीव के वास्तविक सुख नहीं है, ऐसे ही भौतिक दुख भी जीव के सुख दुख नहीं है, ये भी शरीर संबंधी है। जीव का वास्तविक दुख भगवान की विस्मृति है, लेकिन जब तक जीव ये इंद्रिय भोग से ऊपर नहीं उठता तब तक वो इसको महसूस नहीं कर सकता, इसको एहसास नहीं कर सकता कि उसका वास्तविक दुख भगवान की विस्मृति है, उसका वास्तविक सुख भगवान की स्मृति है। इसीलिए पहले उसे जो गौण रिजल्ट है भगवान को भूलने का कि भौतिक दुख, उसको बता करके आश्वस्त किया जाता है कि देखो तुम्हारे भगवान को भूलने का परिणाम है भौतिक दुख। तो जब वो इस कम से कम ये समझ करके आगे चलता है और फिर धीरे धीरे प्रगति करने पर समझता है कि वास्तविक दुख तो उसका है भगवान की विस्मृति होना, तो भगवान के द्वारा ये जो वर्णाश्रम धर्म की स्थिति है, स्थापना है, वो एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा वहीकल है जिसके द्वारा कैसे जो जीव यहां भोग करने की इच्छा से लिप्त हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर उन्हें धीरे धीरे इस बीमारी से निकाला जा सके। इसीलिए विशेष श्रीमद् भागवतम में जो सभी वेदों का सार है, श्रुति सारम, उसमें सभी शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया गया, यानी सभी शास्त्रों को भागवतम की दृष्टि से पढ़ना चाहिए, तब हम सभी शास्त्रों को सही रूप से देख रहे हैं। और यदि शास्त्रों को भागवतम की दृष्टि के बिना पढ़ेंगे तो हम गलत रास्ते पर चलेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार यहां पर बताया गया है त्रापतया उन्मूलनम, भागवतम का परिणाम होता है कि तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन होता है। तो हम जानते हैं कि भागवतम क्यों कही गई, तो नैमिषारण्य में जब एकत्रित शौनक आदि ऋषि थे तो वो लोग वहां एकत्रित थे लोक मंगलम, जन साधारण के कल्याण के लिए, क्योंकि वो ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, तो अपने कर्तव्य के प्रति सचेत थे कि जन कल्याण उनका हेतु था। आजकल के ब्राह्मण नहीं, जिनका कार्य केवल ब्राह्मण होने के नाते अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करना है, वो ऐसे ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे जनहित, और न केवल चाहते थे बल्कि जानते भी थे कि जनहित कैसे होगा। इसलिए वे एक लंबे समय के लिए एक यज्ञ करने के लिए उपस्थित थे वहां, और वहां पर उस समय सूत गोस्वामी आते हैं तो वो उनको व्यासासन में बिठाते हैं और कहते हैं कि अभी भूतानाम भद्राय, लोगों के हित के लिए एकांतम, एकमात्र चीज क्या है ये आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे कि आत्मा संपूर्ण रूप से प्रसन्न हो सके, ऐसा बताइए। और अनेक अनेक शास्त्र हैं, अनेक अनेक लोगों के लिए अलग 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 मार्ग जिसमें बताए गए हैं, भूरी भूरिणी कर्माणी, अनेक अनेक कर्म बताए गए हैं। श्रोत्र ज्ञान विभागशः शास्त्रों के अलग अलग विभाग हैं, तो तत्र सारमेकम, उन सभी का सार आप हमें प्रस्तुत कीजिए, अंजसा, जो सरलता से समझाया सके, ऐसी इस तरह के प्रस्तुत कीजिए। और फिर आप अच्छे से जानते हैं, वे कहते हैं कि क्यों देवकी पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, तो भगवान के सभी अवतार लोगों के कल्याण के लिए आते हैं। भगवान का नाम आपन्न संसतिम घोराम, जो ये जन्म मृत्यु के विकट चक्र में जीव फंसे हैं, इससे निकालने के लिए यन नाम विवश गृणाम, जो भगवान का नाम है यदि वो अनायास भी लिया जाता है तो भी तथाभिमुच्यते, उनका उद्धार उससे हो जाता है। यद विवेति भयम स्वयं भयम, जिससे स्वयं भय भी डरता है। तो ऐसे नाम इत्यादि के विषय में बताएं, उनकी कथा बताएं, उनकी क्रियाएं बताएं, और फिर अंत में कहते हैं कि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि, जो धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं, स्वाम काष्ठा गता, अपने धाम को चले जाने के बाद धर्म कम शरणम गता, धर्म किनकी शरण में गया है, ये सब विषय उन्होंने पूछे। तो फिर सूत्र गोस्वामी प्रारंभ करते हैं उत्तर देना, सभी पुंसाम परो धर्मो यतुर भक्ति रधोक्षजे अहितुकीय प्रत्यता आत्मा सुप्रसिद्धति, कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से सभी आत्माओं को पूर्ण संतुष्टि मिल सकती है, वो भगवान की शुद्ध भक्ति से है। तो भौतिक जगत हमेशा जीव संतुष्टि तो चाहता ही है, लेकिन एकमात्र एक ही तरीका है जिससे यनात्मा सुप्रसिद्धति, जिसमें आत्मा संपूर्ण रूप से प्रसन्न चित्त हो सके, संतुष्ट हो सके, अन्य और कोई तरीका नहीं है। हालांकि इंद्रिय भोग के अलग अलग प्रयासों के माध्यम से हम प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम अपनी स्थिति को बदलना पड़ता है। हमें कोई भी एक भौतिक प्रयास करना प्रारंभ करते हैं, कुछ समय उससे आनंद मिलता है, क्षणिक आनंद, लेकिन क्योंकि वो क्षणिक होता है इसलिए हमें अपनी स्थिति को बदलना पड़ता है। फिर दूसरी प्रकार से हम इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं, फिर तीसरी प्रकार से करते हैं, चौथी प्रकार से करते हैं, और जब अनेक अनेक प्रकार से करने पर भी विफल होते हैं तो अंततः सोचते हैं कि निराकार में ब्रह्म में लीन होकर के हम शायद प्रसन्न हो जाएं, लेकिन वहां पर जाने पर भी अनेक अनेक वर्षों के बाद पुनः इसी भौतिक जगत में लौट जाते हैं, या तो फिर भागवतम यानी शुद्ध भक्ति की तरफ प्रेरित होते हैं अगर अधिक सौभाग्यशाली है तो। यानी कि निष्कर्ष ये है कि जीव की परम संतुष्टि का एकमात्र एक कारण भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके शाश्वत संबंध में स्थापित होना ही है, और अन्य कुछ नहीं। इसीलिए सूत गोस्वामी कहते हैं कि संपूर्ण संतुष्टि तो केवल उन भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति सेवा से होगी। इसीलिए आए कहते हैं धर्म स्वनिष्ठता पुंसम विश्वक्सेन कथास्य नात्पाद्यतिरितम शमय वही केवलम। इसलिए यदि अनेक तथाकथित धर्म भी हम कर रहे हैं लेकिन हमारे को भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है तो वो सब व्यर्थ है। और इसीलिए भगवद गीता के अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि अंततः सभी धर्मों का निचोड़ है भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति लेकर के उनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। प्रेम पुमार तो महान, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। तो सभी ऋषिगण महाजन एक मत होकर के एक ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं, सृष्टि में करने योग्य केवल एक ही चीज है, एक ही कर्तव्य है हर कार्य के पीछे, हर सृष्टि के पीछे एक ही प्रयोजन है, और वो है भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे शाश्वत संबंध में अपने को पुनर्स्थापित करना। तो इस भौतिक जगत में जीवों के क्रमिक विकास के लिए भगवान ने यह वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था रखी है, जिसमें सुचारू रूप से सभी जीव भगवत धाम की तरफ चल सकते हैं। इसलिए श्रुति गोस्वामी कहते हैं, अतः कुंभे द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशय सानिश्चित धर्म से संसिद्धिम हरितोषणम। ये चारों वर्ण आश्रम का एक ही हेतु है कि कैसे सभी जीवों को परम सत्य तक ले जाया जाए, उनके साथ उनका संबंध स्थापित कराया जाए। तो उसके अंतर्गत यहां पर हम देख रहे हैं वैदिक संस्कृति का ये पूरा झरोखा हमारे सामने है भागवतम के माध्यम से। प्रभुपाद जी प्रस्तावना में लिखते हैं भागवतम की, कि ये जो भागवतम है ये जो पूरा गहरे अंधकार में डूबी हुई सभ्यता है उसको प्रकाश देगा ये भागवतम। और भागवतम के ही प्रथम अध्याय में कहा गया है कि ये जो लोगों का पापमय जीवन है अज्ञानतावश, उसमें क्रांति लाने के लिए ये भागवतम की रचना की गई है। और प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि आर्थिक सामाजिक राजनैतिक धार्मिक सभी दृष्टिकोण से संसार को जन कल्याण के लिए मार्ग निर्देशन देने के लिए ये भागवतम है। तो यदि हम इस भागवतम को गहराई से समझें, भक्तों को इसे गहराई से समझकर समाज के हर एस्पेक्ट के लिए, हर पहलू के लिए, राजनीतिक पहलू के लिए, आर्थिक पहलू के लिए मार्ग निर्देशन देना चाहिए, ये एक बहुत महान कर्तव्य हमारा है। तो यहां पर हम देखते हैं सामाजिक रूप से किस प्रकार से भागवतम के द्वारा समझाया गया है कि कैसे सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो ध्रुव महाराज राजा है, राजा को नरदेव कहा गया है, वो भगवान का प्रतिनिधि है, इसीलिए वे अपना कर्तव्य जानते हैं। तो यहां बता रहे हैं कि राजा के लिए स्वाभाविक ये उसका कर्तव्य है कि वो कर एकत्र करे, विशेष रूप से वैश्यों से, ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर आवश्यकता से अधिक जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है, वो सतोगुण में होता है। लेकिन जो वैश्य है उसको अलाउड है कि वो एकत्रित करे, उपजाए, धन संपत्ति को उपजाए। और जो धन संपत्ति है वो दो प्रकार की होती है, अनाज और दूध, ये धन संपत्ति होती है। कागज के पैसे में श्लोक है कि गौधन्य और अनाज को क्या कहा गया है, अन्नम धान्य गौधान्य, तो दो धान, दो धन के बारे में बताया गया है, गौधन और अनाज के रूप में धन। तो वैश्य का कार्य है कि वो इन धन को उगाए। आजकल के वैश्य ये नहीं उगा रहे हैं, वो कंप्यूटर्स उगा रहे हैं, फैक्ट्रीज कलपुर्जे बना रहे हैं, नहीं, धन अनाज और गोधन, और फिर क्षत्रिय जो है उनसे कर लेते हैं उनकी उपज के अनुसार, जितना उगा है उसके अनुसार उनको 25% राजा को देना होता है, वैश्य को। अगर किसी समय में उत्पादन नहीं हुआ है तो नहीं देना पड़ता, उत्पादन के अनुसार है, उत्पादन के अनुसार 25%। और जो ये कर एकत्र हुआ उसका उपयोग राजा कैसे करेगा वो वर्णन यहां है। वो राजा उसको यज्ञ को संपन्न करने में लगाएगा, तो कर एकत्र करेगा और उधर से ब्राह्मण आएंगे और राजा व्यवस्था करेगा, बहुत बड़े स्तर पर यज्ञ किए जाएंगे भगवान की संतुष्टि के लिए। द्रव्य मदा यज्ञ भगवान गीता ने बताया, द्रव्य क्रिया, तो उसमें अनाज घी ये सब यज्ञ में आहुति दी जाएगी, जिससे सभी देवतागण और भगवान संतुष्ट होंगे, भगवान संतुष्ट होंगे और फिर देवतागण संतुष्ट होंगे, और जिससे प्रकृति पर्याप्त मात्रा में सभी व्यवस्था करेगी, जिससे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनको आसानी से पूरा किया जा सके, कोई भी समाज के अंदर किसी को भी आधारभूत आवश्यकता में कोई कमी अनुभव ना हो, पर्याप्त मात्रा में धान सब्जियां और दूध बारिश के होने से उत्पन्न हो, और मोती जब बारिश होती है तो विशेष नक्षत्रों में बारिश होने से, समुद्र में जब बारिश होती है तो विशेष नक्षत्रों के अंतर्गत बारिश होने से वो बारिश के कणों बूंदों से मोती बनते हैं, और जो व्यापारी हैं वो समुद्र में से वो मोती इकट्ठा कर सकते हैं और उसके फिर आभूषण बनाए जा सकते हैं, इसी प्रकार से वो जो सोना है वो भी इसी प्रकार से उत्पन्न होता है। तो ये सब निर्भर है, प्राकृतिक संपदा निर्भर है देवताओं को प्रसन्न करने में, अंतिम रूप में भगवान को प्रसन्न करने में। तो इस प्रकार से व्यवस्था थी कि सभी लोग बिना किसी समस्या के खूब आराम से रहे, जैसा कि युधिष्ठिर महाराज और इन सब के कालों में वर्णन है, संपूर्ण मात्रा में पर्याप्त मात्रा में सब होता था, तो इसीलिए लोग व्यथित नहीं होते थे, क्योंकि दरिद्रम गुण दोषे नाशे, जो दरिद्रता है वो गुणों का नाश कर देती है। एक दृष्टि से दरिद्रता गलत नहीं है, वांछित है दरिद्रता, क्योंकि हम देखते हैं हमारे महान महान गोस्वामी गण जो दरिद्र बन गए जान पूछ करके, वो बहुत अमीर थे, वो नवाब हुसैन शाह के यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्री थे, रूप गोस्वामी का इतना पैसा था कि वो बड़ी नाव भर गया था, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी एक महान जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन उन्होंने इच्छा से गरीबी को अपना लिया, चाणक्य पंडित। तो एक दृष्टि से दरिद्रता वांछित है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो गोस्वामी के स्तर पे नहीं है, उसके लिए उसकी आधारभूत आवश्यकताओं को भली भांति पूरा होना, आसानी से पूरा होना उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा होता है, नहीं तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक विषय में रुचि नहीं ले सकता। यदि उसकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं है, जो आजकल हो रहा है, तो लोग बहुत चिंतित हैं, और चिंताओं की वजह से वो, उसके दो कारण है चिंताओं के, एक तो उनके अंदर लोभ की प्रगति होने से संतुष्टि नहीं है, चाहे भले ही उनके पास पैसा कितना भी हो, एक तो ये कारण है, और दूसरा जो जन साधारण सामान्य लोग हैं उनके पास वास्तव में आज जो आधारभूत चीजें उसकी कमी हो रही है, कमी महसूस करते हैं, अच्छा खाने को नहीं है, अच्छी वायु नहीं है इत्यादि, तो इसकी वजह से आध्यात्मिकता की तरफ उनका चलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए राजा का यह कर्तव्य है कि वो ऐसे यज्ञ में यज्ञों को आयोजित करे जिससे पर्याप्त मात्रा में धन संपदा हो। लेकिन आजकल के राजागण, यहां पर उपाध्याय जी कह रहे हैं कि एक तो बहुत कर लगाते हैं, एक व्यक्ति का 80-90% भाग कर में ले लिया जाता, इसका एक दुष्परिणाम क्या होता है कि जब इतना अधिक कर लिया जाता है तो व्यापारी के अंदर या वैश्य के अंदर उगाने की इच्छा खत्म हो जाती है, हताश हो जाता है वो। अगर सोचिए वो इतना मेहनत करके उगाए और 80-90% सरकार को देना पड़े तो वो क्यों उगाएगा, वो सोचेगा मैं फटे हाल रहना ठीक है, क्यों मैं उगाऊं, क्यों इतनी मेहनत करूं, मेहनत मैं करूं और 80-90% इन लोगों को दे दूं, क्यों दूं। तो इसलिए लोगों के अंदर वो इच्छा कम हो जाती है, वैश्यों के अंदर उसका एक दुष्परिणाम ये होता है, और दूसरा कि आजकल के जो कर है वो इस बात से संबंधित नहीं है कि कितना उत्पादन हुआ, वो जबरदस्ती सबको देना ही है, तो इस वजह से और समस्या है, एक तरफ बारिश नहीं है, उत्पादन नहीं है, और दूसरी तरफ ये जबरदस्ती कर लगाए जा रहे हैं, तो और लोग परेशान हैं। तीसरा, ये जो कर लगाए जाते हैं तो ये लोग आपस में बांट लेते हैं उसको अपने इंद्रिय भोग के लिए। अभी मैं गया था दिल्ली में, तो वहां पर पता लगा कि अभी सब सांसदों की जो सैलरी है कई गुना हो गई है, क्योंकि बिल पास करने वाले वही लोग हैं, आपस में बैठ करके बिल पास कर दो, अभी उनकी सैलरी बहुत कई गुना बढ़ा दी गई है। उनको कहीं भी, उनके पूरे परिवार वालों को कहीं भी इंडिया में बाहर कहीं भी जाए एयरप्लेन का टिकट फ्री है, कहीं कितने भी जाओ, ऐसे तो बहुत सारी छूटें दी गई हैं अभी उनको रिसेंटली। तो जैसा भागवत का वर्णन है बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है, अधिक से अधिक कर लगाए जाएंगे और उसका उपयोग यज्ञ करने में नहीं किया जाएगा, राजा लोग अपनी इंद्र तृप्ति में करेंगे। तो वैसा देखने में मिल रहा है और इसका परिणाम है कि लोग परेशान हैं, त्रास में हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जब ये स्थिति आज कलयुग में है कि लोगों के पास कमी है चीजों की, इसलिए वो सब यज्ञ करना संभव नहीं है, इसलिए कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का प्रावधान शास्त्रों में दिया गया है, जिसे बिना किसी पैसे के होने पर भी कर सकते हैं, हाथ से ताली बजा सकते हैं, मुंह से भगवान का नाम ले सकते हैं, बस यज्ञ हो गया। गृहस्थ लोग बैठ करके यज्ञ कर सकते हैं और यथासंभव प्रसाद वितरण कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा आंदोलन इन दो चीजों पर टिका है, आधारित है। और प्रभुपाद जी दूसरे में ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो नेतागण है वो हमारा इसमें सहयोग करें, तो उनके पास तो वो वैसे भी उनका ट्रेजरी कंगाल है, तो हमको तो पैसा तो जा नहीं दे सकते, सब गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा है जबरदस्त, भारत की सरकार के ऊपर IMF कितना, जस्ट $6 लाख, मस्ट बी मच मोर, $6 लाख नथिंग, मस्ट बी मच मोर, सबके ऊपर है, जर्मनी के ऊपर बहुत कर्जा है, अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, जो हम सोचते हैं वो बड़ी कंट्री है, सब कर्जे में हैं, तो वो लोग से हम क्या मांग कर सकते हैं। लेकिन कम से कम वे लोग ये संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने में यदि मदद करें हमारे, प्रभुपाद जी चाहते थे कि नेतागण अगर हमारे को सहयोग करें, आयोजित कराएं जगह जगह पर, और हमें ये फूड प्रोडक्शन के लिए हेल्प करें, हेल्प क्या करें, जस्ट अलाउ करें, हमें और कोई हेल्प नहीं चाहिए, हम लोग खुद उगाएंगे और प्रसाद वितरण करेंगे। लेकिन कम से कम उनकी नीतियां जो होती हैं, क्योंकि नीति है, जैसे जमीन के बारे में बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि ये जमीन नहीं ले सकते हैं ट्रस्ट, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो बहुत विघ्न डालते हैं, जमीन उपलब्ध नहीं है, विशेष रूप से भारत में जमीन उपलब्ध नहीं है, बहुत कम जमीन है, सब हड़प लिए हैं जमीनों को और उसमें तंबाकू लगा रहे हैं या तो वो फैक्ट्रियां हैं, तो इससे दिक्कत है। लेकिन यदि सहयोग किया करें नेतागण, तो ये दो कार्य भी किए जा सकें कि खूब संकीर्तन हो और खूब अनाज उगाया जाए और फिर इसको प्रसाद वितरण किया जाए, तो पूरा परिप्रेक्ष्य जो कलयुग का है वो बदल जाएगा, स्वर्णिम युग आएगा उस तरीके से जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है और उनकी भविष्यवाणी है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के आगे अनेक अनेक कार्य हैं करने के लिए, उसमें से एक कार्य है कि भागवतम में से समझ करके हम लोग जो आज के जो नेतागण हैं, जो वरिष्ठ जो लीडर्स हैं नेतागण समाज के, अधिकतर असुर हैं लेकिन फिर भी प्रचार से कुछ भी थोड़े मिलेंगे, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि नेताओं को प्रचार करना बहुत मुश्किल है, कुछ ही मिले, चाहे भले ही वो एक मिले दो मिले, लेकिन वो लोगों को कन्विंस करना कि किस प्रकार से उन्हें भागवतम के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए, प्रशासन करना चाहिए, या कैसे हमको हेल्प करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी के पास कई बार ये मिलने आते थे गवर्नर मिनिस्टर, तो प्रभुपाद जी इस पर हमेशा एम्फेसाइज करते थे कि आप हमारे सहयोग करो। लेकिन उसके लिए बहुत प्रवीण होना पड़ेगा प्रचारक को, उसको पूरा सिस्टम पता होना चाहिए कि वर्णाश्रम कैसे कार्य करता है, क्योंकि तभी वो लोग सुनेंगे। यदि वो लोग हम ऐसी चीज बोलेंगे जो व्यावहारिक नहीं है तो वो लोग उसको सुनेंगे भी नहीं कि आप बकवास कर रहे हो। तो जैसे एक मुख्य कार्य है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, गोरक्षा को बढ़ाना। तो यदि हम लोग उनके सामने प्रपोज करें कि देखो हम लोग गोरक्षा कर रहे हैं और उस गोरक्षा के लिए क्या हमारा प्रपोजल है कि उसमें इतना खर्चा चाहिए, आप हमको इतनी सब्सिडी दो, इतना पैसा हमको दो गोरक्षा करने के लिए, तो वो प्रस्ताव ही गलत है। वो बोलेंगे इसमें गोरक्षा में इतना पैसा देना पड़ेगा, ऑलरेडी हमारे पास पैसा नहीं है, तो अगर गोरक्षा से में पैसा खर्च करना पड़ेगा इतना और सतत खर्च करता रहना पड़ेगा कंटिन्यू सब्सिडी, क्योंकि हर बार गाय को हम गाय को पालन करेंगे और उसको फिर धान चाहिए तो वो आप हमको सब्सिडी दे रहे हो, हमको भेजते रहना घास। तो बोलेंगे ये कैसा संभव होगा फिर, आप कह रहे हैं पूरे संसार में गोरक्षा को बढ़ाएं, तो यदि ये आपका मॉडल है कि गाय पालो और फिर उसका डोनेशन कलेक्ट करो, उससे घास कलेक्ट करो, तो ये मॉडल तो फेल हो जाएगा। पूरे संसार में फिर हम बढ़ा रहे हैं तो कहां से आएगा सबको, इसका मतलब तो गड़बड़ हो गई। लेकिन यदि हमको ऐसा मॉडल प्रस्तुत करें कि नहीं गाय जो है वो उसको मेंटेन करने के लिए घास नहीं, वो जमीन है और जमीन में अनाज उत्पन्न हो, अनाज आदमी ले और घास गाय खाएगी जो घास बेकार हो रही है, और उससे उसका पालन होगा और बल्कि दूध मिलेगा, तो सही में आएगा कि ये काम कर सकता है ये आइडिया। तो इस तरीके से बुद्धिमानी से उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा मॉडल्स को, क्योंकि वो लोग बुद्धिमान है, वो लोग इतने तो जानकार हैं कि आप जो उनको प्रपोज कर रहे हैं उसका उसको लार्ज स्केल पे वो लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो यदि हम उनको ऐसी चीज प्रपोज कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है तो वो लोग क्यों उसको स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए ये सब पहलू पर बहुत गहराई से अध्ययन की जरूरत है, तभी वो लोग नेता लोग के पास हम जा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं। और उसी के आधार पर हमको मॉडल बनाने की जरूरत है, न केवल बात करने की जरूरत है पर ऐसे मॉडल बनाने की जरूरत है जहां पर हम दिखा सकें देखो हम लोग गोपालन करते हैं, सेल्फ सफिशियंट है। आप यदि इसी को डुप्लीकेट करो इसी मॉडल को तो सब जगह संभव है, तब वो लोग उसको स्वीकार करेंगे ना। हम ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं एक फार्म हाउस जिसमें हर साल हमको पैसे की जरूरत पड़ती है डोनेशन, तो फिर वो मॉडल वायबल नहीं है। वो कहेंगे इससे क्या फायदा हुआ, कौन डोनेशन देगा हर आदमी को, आप तो ट्रस्ट आपको डोनेशन दे रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ये मॉडल अच्छा है, क्या मॉडल है ये तो बैड बिजनेस हो गया, वो काम नहीं करेगा। तो हमें ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना है और ये प्रोपा चाहते सेल्फ सफिशियंट कम्युनिटीज की, देखो हम लोग अपना रहते हैं सिंपल रहते हैं और सेल्फ सफिशियंट, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, बाहर से पैसे की आवश्यकता नहीं है, अपने आप उगाते हैं और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में समय है, हमारी कोई भौतिक समस्याएं नहीं है, हमारी सामाजिक समस्याएं नहीं है, हमारे यहाँ परिवारों में डाइवोर्स नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, हमारे यहाँ बच्चों का शिक्षण, जो बच्चे बन रहे हैं हमारे यहाँ से उनका चरित्र देखो कितना अच्छा है, वो लोग दारू पीने वाले नहीं है या विमेन हंटिंग करने वाले नहीं है, चरित्र उनका बहुत अच्छा है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। ऐसे सब तरीके से हम उनको मॉडल प्रस्तुत कर सकें तब उनकी समझ में आ सकता है कि यस दिस इज गुड। और यदि हम लोग ऐसे गुरुकुल प्रस्तुत कर रहे हैं जहां से हिप्पी बन के निकल रहे हैं तो जो भी है वो भी बंद हो जाएगा, करेक्ट। या जो ऐसी फार्म है जिसमें से बच्चे जो बन रहे हैं निकल रहे हैं उनके उनको कुछ चांस नहीं है आगे जॉब का, वहां पर एंगेज करने का, उनको विवश होकर बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो फेल मॉडल है। तो फेल मॉडल प्रस्तुत करने से समाज के अंदर परिवर्तन नहीं आने वाला। तो ये सब कोई भी चीज को शुरू करने से पहले उसके वो गहराई में सब चीजों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो थोड़े दिन में शुरू होगा और फिर बंद हो जाएगा जैसे हर होता रहा है। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको गहराई से समझ करके आज तक बहुत सारे प्रयास होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं क्योंकि पूरी तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं सिस्टम को। और यदि वही गलती करके दोबारा शुरू करेंगे तो वही परिणाम होने वाला है, नया नहीं होने वाला। इसलिए उसको समझ करके कहाँ गलती है, उस गलती से बच करके और उसको पूर्ण रूप से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। कोई कमेंट? हाँ नहीं, एक्चुअली जो हाँ वो कृष्ण जो है परमात्मा के रूप में वही बोल रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तप्ताम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में अनेक जगह पर परमात्मा के रूप में अपने को इंगित कर रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदेश अर्जुन तिष्ठति। तो यहाँ पर जो भोक्ताराम, तो वो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का जो परमात्मा फीचर है उसके लिए बात की जा रही है। तो जो यज्ञ होता है वो परमात्मा के लिए होता है, और विष्णु और कृष्ण, कृष्ण क्योंकि अवतार ही है अंततः, इसलिए उसमें कोई अगर हम कहें कि वो कृष्ण के लिए होता है तो गलत नहीं है, लेकिन विशेष रूप से वो विष्णु के लिए है जो परमात्मा में, जो इस भौतिक जगत से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में है, लेकिन इस जगत का मेंटेनेंस, क्रिएशन का जो कार्य है वो विष्णु देख रहे हैं। इसलिए जब हम कहते हैं भोक्ताराम तो वो विष्णु के लिए इंगित है। अधिकतर देश,
लेकिन
ये कैसे पॉसिबल है? या एक्चुअली जो वर्ल्ड बैंक है, मींस पूरी इकोनॉमी जो है वो IMF वर्ल्ड बैंक, तो ये लोग वहां से लोन ले रहे हैं, और जो उनकी अपनी जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो फेलियर है जिसकी वजह से वो लोग डेट में जा रहे हैं। तो डेड एंड इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी जो बेसिस है वो खुद ही उससे उनका वो होता जा रहा है, सबका लॉस होता जा रहा है उस इकोनॉमी, बैड इकोनॉमी, वो प्रॉफिटेबल इकोनॉमी नहीं है, और वो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कई तरीके से ये सेक्टर्स की वजह से वो डेट हो रहा है, और उसका डिटेल तो मेरे को पूरा पता नहीं है कि क्यों क्या कारण से हो रहा है, वो तो स्टडी करना पड़ेगा गहराई में कि क्या हो रहा है। IMF, they are taking loan from IMF. They are generating, yeah. वो भी एक डिटेल इशू है, that has to be in depth study करना पड़ेगा उसको भी। I don't know about that full detail. कैसे IMF का वो क्या sources है उसको, I don't know. ये बहुत complicated level पे है सब, ये सब पूरा world economy आज बहुत complicated level पे है। I don't understand that fully. I have to study. हरे कृष्ण ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।